सूरत है मोमिनून, पूरी हुई। ईमान मोमिन और अगली सूरत है नूर, क्या रब्त है इसमें। मोमिनून सूरत में अल्लाह ने इफ़्फ़त व पाकीज़गी कैसे अपनाई जाए, आपको मुझे मोमिनीन की सिफात से लेकर पूरी सूरत में बता दिया। ये करो वो करो, ईमान लाओ, नमाज, खुशू, खुदू, लघवियात से पाकी। अब आगे सूरत नूर में इफ़्फ़त व पाकीज़गी से मुतल्लिक आदाब और कवानीन है। देखिए, एक होती इस्लाम की तबलीग जो हज़रत मूसा ने भी की और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी की, अल्लाह के नबी ने मक्का में 13 साल की, उसमें नरमी होती है। लेकिन उससे अगला दर्जा है तनफीज़े इस्लाम। मुश्किल लफ्ज़ बोला है ताकि आप जाग जाएं, अब आसान बोल देती हूँ। इस्लाम का निफाज, पारे का थीम क्या है, निफाज़े शरिया। अभी तक सूरत बकरा से लेकर सूरत बनी इसराइल तक खास तौर पे जिना, बदकारी, बेहयाई की बात जब आई तो हकीमाना अंदाज था, लाइट मोड में बात की गई। मसलन सूरह बनी इसराइल आयत 32, वला तकरबुस जिना, जिना के करीब ना हो। इसी तरह सूरत बकरा 2 और 9 में क्या कहा, वला तत्तबी खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ठीक है, यानी जैसे आप बच्चे को कहते हैं बेटा आपको करना चाहिए, बेटा आप ये ना देखिए, ये अंदाज, इसको कहते हैं बलीगाना अंदाज, हकीमाना अंदाज। यानी प्यार मोहब्बत से जरा वो जिसको आप कहते हैं कि अगले के लाड दिखाने वाला बात, और ये अंदाज इख्तियार किया जाता है नए आने वालों के साथ। नए नए लोग हैं, उन बेचारों को क्या पता वो क्या है, उनके साथ तो यही पैगाम था। अब सूरत नूर में तहक्कुमाना अंदाज है, यू हैव टू डू दिस। बच्चे को एक दफा प्यार से समझाएंगे, दो दफा प्यार से, लेकिन तीसरी दफा फिर गुस्से से, तो सूरत नूर लोगों को बहुत चुभती है। हालांकि नूर का लफ्ज कितना प्यारा है, मैं अक्सर कहती हूँ कि नूरुल कुरान, इस लफ्ज से तो कभी कोई बैर ना खाया, कि दोनों ही लफ्ज बड़े प्यारे हैं, एक कुरान है तो एक नूर है। तो सूरत नूर जो तरतीब में 24th नंबर की सूरह है, 64 आयात हैं। इस सूरत के अंदर वाकई वो नूरानी अहकाम है जो किसी माशरे के अंधेरों को ख़त्म करने वाले। पारे के थीम के साथ चलते हुए हम इसको पढ़ते जाएंगे। आज पूरी दुनिया में जुलुमात हैं, अंधेरे हैं, एक तो जहालत के, जुल्म और बर्बरियत के, फुहाशी के, हम जिन्स परस्ती के, पेडोफीलिया के, और इसी तरह से गंदगी और बेहूदगी। आपको उस 15वें पारे में मैंने एक रिपोर्ट बताई थी पढ़ के, कि आज के दौर का सबसे फ्लरिशिंग बिजनेस पेडोफीलिया, गंदी फिल्में देखते हैं, सबसे ज्यादा क्लिक्स जिन वीडियोस पे आते हैं वो न्यूड फिल्में हैं। पहले भी बनती थी, ये ना सोचें। अभी हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी के दौर में भी अब्दुल्ला बिन उबई प्रोस्टिट्यूशन करवाता था लौंडियों से। कुछ दौर गुजरा, आपने जो देखा होगा गंदे नॉवल्स होते थे, गंदी तस्वीरों वाली वीडियो होते थे, और अक्सर आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में टिल के पास ऐसे गंदे रिसाले होते थे कि अटेम्प्ट होकर ले लेंगे। आज वो खत्म, पहले गंद लिखते हैं, बोलते हैं, पिक्चराइज करते हैं और इसको मीडिया पे डाल देते हैं, एक मासूम बच्चा भी उसको खोल लेता है। और क्या कुछ इसमें कहानी है, कोशिश करते हैं कि सूरत के साथ साथ चलें। देखिए सूरत आपसे मुझसे क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 1 से 10, जलाल और पुरजोर आगाज, तहक्कुमाना अंदाज। यस, अल्लाह को हक है क्योंकि वह हकम है, उसने प्यार से बहुत दफा समझा लिया, बहुत सारी बातें कर ली। तो अगर किसी के दिमाग में कोई नेगेटिविटी आए तो पारे का शुरू का हिस्सा जरा दोबारा सुन ले, तो आपको मुझे इन बातों को सुनकर समझ आ जाएगी कि अल्लाह को हक है कि अपने इस दुनिया के ऊपर अपना निज़ाम नाफिज करे। सूरत अनज़लनाहा व फ़रदनाहा व अनज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, ये वो सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई है और मुकर्रर कर दी है, और जिसमें हमने खुली आयतें और अहकाम उतारे ताकि तुम याद रखो। जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस ना खाना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान हो, इनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। जानी मर्द बजुस सानिया या मुशरिक औरत के किसी और से निकाह नहीं करता, ये टेस्ट है उनका, चॉइस है उनकी, गंदी चीजें को पसंद आती हैं। और जिनाकार औरत भी सिवाय जानी या मुशरिक मर्द के किसी और से निकाह नहीं करती, और ईमान वालों पर ये हराम कर दिया, यानी ईमान वालों का गंदी औरतों से निकाह और गंदे मर्दों का पाक औरतों से निकाह। जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं फिर चार गवाह पेश ना कर सकें तो इन्हें 80 यानी 80 कोड़े मारो, 80 व्हिप्स, और कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो, यानी किसी निकाह में इनको गवाह नहीं बना सकते। अगर किसी ने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया है, हद भी लग जाएगी, लेकिन वो कभी किसी अदालत में और किसी घर की शादी और किसी मौके पे गवाह नहीं बन सकता। उधार का कोई लेन देन हो रहा है, गवाह लाओ जी, इसका नाम नहीं लिख सकते क्योंकि ये गंदा काम कर चुका है पहले। ये फासिक लोग हैं। हाँ, जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला। अब ये तो थी बात बाहर की। अब घर में अगर किसी शौहर बीवी के बीच में ऐसा कोई मामला आ जाए तो जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और इनका सिवाय खुद अपनी जात के कोई और गवाह ना हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत ये है कि चार मरतबा अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से है, और पांचवी मरतबा कह दे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। इसको कानूने लियान कहते हैं। और इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि वो चार मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन इसका मर्द झूठ बोलने वालों में से है, और पांचवी दफा कहे इस पर अल्लाह का गजब हो अगर इसका खावन सच्चों में से हो। अगर अल्लाह ताला का फजल तुम पर ना होता तो तुम पर मुशक्कत उतरती, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला बाहिकमत है। ये था जी पहला रुकू। दो आयात ईमान से मुतल्लिक, नूर 2, इस्लामी सजाएं, इंसानियत दोस्त हैं, इंसानियत सोच नहीं। इंग्लिश का जुमला लिख लें कि इस्लामिक पनिशमेंट्स आर नॉट बर्बेरिक। इस्लाम जुल्म नहीं करता किसी को ऐसी इतराएं देकर। और आयत 3 में लिखी है अल्लाह नस्ब की हिफाजत चाहता है, इसीलिए अल्लाह ने जिना की इतनी सख्त सजा रखी है। अब प्लस फरद नाहा से सूरत शुरू हुई। पूरे कुरान में कोई सूरत इतने पुरजोश अंदाज से नहीं शुरू हुई। अल्लाह ताला बता रहा है इसको टेक इट ईजी। फरद नाहा, हमारा दीन नस्ब की हिफाजत करता है और हमें हया का हुक्म देता है। जिना एक ऐसा कबीरा गुना है जिससे ईमान रुखसत हो जाता है, यानी बुरी आदतों पर अगर सजा ना हो तो जाती नहीं है, इसीलिए हदूद में नरमी को पसंद नहीं किया गया। फरद नाहा का लफ्ज बता रहा है कि बच्चे की बात नहीं है, ये तुम्हें कही जा रही है, ये किसी औरत या मर्द की बात नहीं है, या अहकमुल हाकिमीन की तरफ से हुक्मनामा है, और ये मशुरा नहीं है, ये हुक्म है। यस, सर उठाकर जिए, बोले है इस्लाम में जानी की सजा ये। क्यों? अल्लाह ताला को नस्ब बचाना है। और ये सजा कहाँ दी जा रही है इसको तो जहन में रखिए, जरा सा देखिए कि आज जिस मुआशरे में हम हैं उसमें तो ये बातें समझ ही नहीं आती, क्योंकि जहां निकाह को मुश्किल किया जाएगा वहां जिना आम हो जाएगा, और जहां जिना आम है वहां निकाह मुश्किल हो गया। इज इट ट्रू? आप इजाजतें दे दें बच्चों को तो फिर शादियां वो करें क्यों? अब ये सजा क्यों इतनी सख्त है? कुछ नए जहन हो सकता है सोच रहे हो, तो याद रखिए ये सजा पब्लिक में ये फेल करने वाले पर लागू होगी। ऐसी नहीं, चार लोग, जैसे कहना कि अपने सर की आंखों से बाहोशो हवास किसी को दूसरे के साथ ये अमल करता देखें। अब कोई ऐसा करने वाला खुलेआम पे तो नहीं करेगा, ये सिर्फ वही लोग करेंगे जो गंदी फिल्में बनाते हैं। लिखिए ये सजा असल में ना गंदी फिल्में बनाने वालों के लिए, फिल्मों में गंदे सीन अपनाने वाले, क्योंकि जहां ये फिल्में पिक्चराइज हो रही होती हैं वहां कोई कैमरामैन तो होगा ना एक गवाह, प्रोड्यूसर तो होगा ना दूसरा, कोई मेकअप आर्टिस्ट, चार बंदे जमा हो गए। अब इनको इस फिल्म के बाद जाकर इनको जाकर ये सजा दे दो। आप चाहते हैं गंदगी फैले, न्यूडिटी फैले, प्रॉन फिल्में बने, पेडोफिलिया हो? ये असल में इस्लाम तो गंदगी के कचरे को जला रहा है और आप इस पे गुस्सा करते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि फिल्मों ने मोहब्बत के नाम पे, कि हीरो को हीरोइन से और हीरोइन को हीरो से मोहब्बत है, जिना को गड़मट कर दिया। कहते हैं ये लव चाइल्ड है, नहीं ये तो लिविंग टुगेदर है, नहीं ये तो हम एक दूसरे को ट्राई कर रहे हैं, ला हौल वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। तो लिखिए ये सजा इबरत के लिए है, वीडियोस की जीनत बनाने के लिए नहीं। नहीं मिलती ये सजा, इस्लाम की ये शर्त पूरी नहीं होती अक्सर, जबकि कोई खुद न्यूड होकर सामने लोगों के गंदगी को फैलाना, ये नाइट क्लब्स वालों की सजा है, ये गंदे बेहूदगी जो महफिलों में बैठ के करते हैं उनकी सजा है। वहां तो सारे गवाह होंगे ना, अकेले में कोई लड़का लड़की किसी के साथ कोई ऐसा जुर्म करता है कोई सजा नहीं। तो बहरहाल अल्लाह के नबी की हदीस है कि जमीन पर एक मुजरिम को हद लगाना जमीन वालों के लिए 40 दिन की बारिश बरसने से बेहतर है। आज आप हदूद नाफिज करें देखिए जरा फिर अल्लाह की रहमतें क्या आती हैं। लेकिन इससे पहले लोगों का वो किरदार कद अफलहल मोमिनून से लेके वारिसून तक का, अल्लाह हमारी जिंदगी में तो कम से कम ये चीज दिखा दे। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि इस्लामी निजाम के निफाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी है और फिर इसके लिए कुर्बानियां भी देनी है। खड़े भी रहना, जरा सी बात हुई और फिर दुबक के बैठ जाना, ये भी दुरुस्त नहीं है। शादी का फैसला करते वक्त पाकीज़गी को बाकी चीजों पर फोकियत देनी है। रिश्ते करते वक्त बेटों और बेटियों के खुदा के लिए दूसरी तरफ वाले का किरदार देख लीजिए। धब्बे तो नहीं, कहीं आपकी पाक दामन बच्ची को कहीं वो कुछ और ही ना बना दे। अपनी जुबानों को तोहमत जैसे गलत काम से पाक रखना है। आप देखिए कि जिना की सजा 100 कोड़े और किसी पे जिना की तोहमत लगा देना बगैर सबूत के 80 कोड़े, फर्क कितना है? इसका जम बना दीजिए, फर्क सिर्फ 20 कोड़ों का है इस फेल को करने वाले और इस फेल को कहने वाले पे। अब यहाँ आगे अमली तौर पे एक वाकया जो अल्लाह के नबी की जिंदगी का, मैं कह सकती हूँ, मेंटल एंड इमोशनल लेवल का सबसे स्ट्रॉन्ग वाकया था। अल्लाह के नबी की चहेती मनपसंद बीवी आयशा पर तोहमत लगी और उस मदीना की गलियों में 1 महीना तक उदासी रही। नबी और उनकी बीवी के बीच में फ्रिक्शन रही। आयशा घबरा गई, माँ बाप के घर चली गई, माँ बाप ने भी कुछ ढंग से बात ना की। जिस ट्रॉमा से आयशा गुजरी, और अगर आज इस वाक़े को पढ़ते वक्त आप उस पर रश कर रहे हैं ना कि बीबी आयशा के नाम पर इतनी आयतें कुरान में आ गई, तो यहाँ देखिए कि किरदार पाक हो। पीछे मरियम की बात थी या आयशा की बात है, यहाँ जुमला लिख लीजिए, इस्लाम नहीं चाहता कि आयशा जैसी बच्चियों पे तोहमतें लगे और मरियम जैसी बच्चियों को लोग बातें सुनाएं। अपनी बच्चियों को सामने रखकर सोचिए, आप में कोई चाहता है आपकी बेटी पे तनकीद हो? किधर जाती है ये, रात कहाँ रहती है ये, देर से क्यों आती है ये, दोस्त की सहेली और सहेली का दोस्त और फलां, आपको अच्छा लगेगा आपकी बेटी के लिए कोई कहे? और कोई किसी औरत के बारे में कहे, हमें पता है ये इनके मियाँ साहब के दोस्त के अंदर आते हैं और ये मियाँ तो इसके है ही नहीं है, क्या ये किटी पार्टीज की गंदी बातें नहीं है, ये जोक्स नहीं है? सुनाओ भाई आज किधर डोरे डाल रही है ये, आज ये मिक्स गैदरिंग शादियां हॉल और उसमें जो आंखों ही आंखों में जो मोहब्बत के दास्तानें हैं, और इस वक्त का जिना जो है ना, याद रखिए कोड़ों वाला नहीं है, रजम वाला है। शादीशुदा लोगों की ज्यादा चक्कर है, ज्यादा स्कैंडल है। अल्लाह हम सबके नसब को पाक कर दे। तो आइए देखिए वाकिफ की हिकमतें। इन अल्लज़ीना जाओ बिलिफ की उस बतुम मिनकुम, जो लोग ये बहुत बड़ा बहुतान बांध लाए हैं ये भी तुम ही में से एक गिरोह है, यानी घर के भेदी ही लंका ढाते हैं, गैरों ने नहीं अपनों ने बदनाम किया। तुम इसे अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है, ये है तसल्ली। हाँ इनमें से हर एक शख्स पर इतना गुनाह है जितना उसने कमाया है, और इनमें से जिसने इसके बहुत बड़े हिस्से को सर अंजाम दिया उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। लिखना चाहे तो लिख ले, अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ इशारा। इसे सुनते ही मोमिन मर्दों औरतों ने अपने हक में नेकगुमानी क्यों ना की और क्यों ना कह दिया कि ये तो एक खुल्लम खुल्ला सरीफ बहतान है, वो इस पर 4 गवाह क्यों ना लाए? और जब गवाह नहीं लाए तो ये बहतान बाज लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक महज झूठे हैं। और अगर अल्लाह का फजलो करम तुम पर दुनिया में ना होता तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर दिए थे इस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंचता, जबकि तुम इसे अपनी जुबानों से नकल दर नकल करने लगे, यानी जो मुंह में आया बोलते रहे, और अपने मुंह से वो बातें निकालने लगे जिसकी तुम्हें मुतलक खबर ही ना थी, वो तुम इसे हल्की बात समझते रहे लेकिन अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ी बात थी। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं, या अल्लाह तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुख्तान और तोहमत है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि तुम कभी भी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान करता है और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। अब इसके सीक्वेंसेस, जब ऐसी बातें आम होती हैं तो वो क्या है? जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद रहते हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता और तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता और इसकी रहमत ना होती तो ये भी कि अल्लाह बड़ी शफकत रखने वाला मेहरबान है, मुराद के तुम पर अजाब उतरता। तो दो आयात इसमें ईमान से मुतल्लिक, 17 नूर, मोमिन गलती करके झुकता है अकड़ता नहीं, हमारे इसको कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। सूरत नूर 19, बेहयाई ऐसी वबा है जो पूरे मुआशरे के अखलाक को तबाह कर देती है। लिख लें कि ये कोरोना से बड़ी वबा है। पेंडेमिक का जो दौर था ना, आज भी वही चाहिए। आइसोलेट कर दिया था ना, शेक हैंड मना हो गए थे ना, मुंह पे मास्क आ गए थे ना, मास्क आ सकते थे, निकाब नहीं आ सकता। औरत मर्द जब कोरोना के डर से शेक हैंड नहीं कर सकते, तो क्या जिना के डर से नहीं कर सकते? और इसी तरह की बाकी बातें। और फिर आयत 12 नूर में क्या पैगाम है? वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन। हमारे लिए इसमें अखलाकी सबक क्या है? किसी से मुतल्लिक बुरी बात सुने तो कहें मुझे यकीन नहीं आता, और जिसकी बात हो रही है ना उसका दिफा करें, हम तो हूं और सर करीब करके थे, और क्या हो, और भी बताओ, मुझे भी शक था, मुझे पहले से ही लग रहा था। फिर आप देखिए 15 नूर में वतख सबू नहु है यिनन वहु इंदल्लाही अजीम। तुम इसको हल्का जानते थे, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा, और माफ कीजिए ये गुनाह ज्यादा औरतें करती हैं। मर्द तो सियासत की बातें करते होंगे या कोई कारोबार की करते होंगे ना, औरतें करती हैं। अच्छा और सुनाओ फिर क्या हुआ? तो लिखिए गुनाहों को हकीर नहीं जानना। तशील फाहिशा की बात हुई है, ये हमारा जिहाद। आज चारों तरफ गुबार है, बारिश थोड़ी देर में खत्म हो गई, गरज चमक हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम निखर गया, लेकिन ये फहाशी का गुबार है ना, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज माएं बच्चों की इंटरनेट से परेशान है, बीवियां अपने शोहरों के फोनों से परेशान है कि ये पासवर्ड क्यों लगाते हैं और मेरे आते ही स्क्रीन क्यों बदल देते हैं। वजह बाहर की दुनिया में बेहयाई का फरोग है। पेडोफिलिया हो या और पोर्नोग्राफी हो, ये सब कुछ फैला ही तब जब सूरत नूर के अहकामात को हमने छुपा दिया। आप देखिए शम्मा के ऊपर आप कपड़ा डाल देना तो कपड़ा ही जल जाता है। ये कुरान तो एक शम्मा थी, एक नूर था। सूरत नूर एक नूर है, इसको आम कीजिए। रोशनी को फैलाते हैं, छुपाते नहीं है। हम ऐसी बातें छुपा जाते हैं, नहीं नहीं लोग क्यों सुने, लोगों को क्यों पता चले, लोग हमारी बात सुने, ये करें। तो याद रखिए कि ना, अगर जिना का चर्चा हो, आज है ना, अगर जिना का चर्चा है तो सजा का भी चर्चा होना चाहिए। आप इन आयतों को आम कीजिए, लोग जिना को आम कर रहे हैं। फेथ इन एक्शन, किसी जगह साथियों से जुदा हो तो आगे बढ़े बगैर इसी जगह इंतजार करें। ये वाकया इफ्क में हजरत आयशा की सुन्नत हमें मिली। बगैर तस्दीक किसी बात को आगे नहीं बढ़ाना। फुहश मवाद और फुहश कलाम को आगे बढ़ाने का जरिया नहीं बनना। इसमें 101 पॉइंट्स बन सकते हैं। इशारे को काफी समझिए। घरों से हर वो चीज निकाल दीजिए जिससे आपकी अपनी आंखें कान दिल दिमाग गंदा हो, और बच्चे तो वैसे कोरे कागज होते हैं। अम्मा अब्बा की लाई भी कोई चीज ही बच्चों ने अगर खुद देख ली तो आप सोच सकते हैं कि फिर उनका उसके अंदर क्या अंजाम होने वाला है। अल्लाह करे कि हम सबको यही बात समझ में आ जाए। आगे है जी, उसी के आगे कुछ और इफेक्ट्स, यानी मदीना में जो बहुत ही एक तकलीफ का दौर गुजरा उसको बुनियाद बनाकर इंसानों का फायदा। और यहाँ को नंबर 3 में आयत 21 से 26 में जैसा किरदार वैसी रगबत, और आप सबको आपके रब की पुकार आने लगी है पहली दफा इस बारे में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतानी। ए ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करे वो तो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा, और अगर अल्लाह ताला का फजल व करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह ताला जिसे पाक करना चाहे कर देता है, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तुम में से जो बुजुर्ग और कुशादगी वाले हैं कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। इन्हें अपने कराबतदार और मिस्कीन और मुहाजिरों को फी सबीलिल्लाह देने से कसम नहीं खा लेनी चाहिए? कौन? मस्तो अबू बकर सिद्दीक, जिसकी किफालत करते थे, बल्कि माफ कर देना और दरगुजर कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते? अला तुहिब्बूना, क्या कि अल्लाह तुम्हारे कसूर माफ कर दे? अल्लाह ताला कसूरों को माफ करने वाला मेहरबान है। अबू बकर का जवाब, अल्लाह ताला हम चाहते हैं। पहले से ज्यादा देने लगे मस्तों को। जो लोग पाक दामन भोली भाली बा ईमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं, यहाँ कौन मुराद है? आयशा सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, वो दुनिया और आखिरत में मलून है। यानी ऐसी आयशा पे तोहमत लगाने वालों को खैर मिलनी चाहिए कि जो आटा गूंद के रख जाती थी और बकरी खा जाती थी, इतनी बोली आयशा। और इनके लिए बड़ा भारी अजाब है, जबकि इनके मुकाबले में इनकी जुबानें और इनके हाथ और इनके अमाल की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह ताला इन्हें पूरा पूरा बदला हक और इंसाफ के साथ देगा, और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही हक है और वही जाहिर करने वाला है। अब सुनिए जरा सा मिजाज चॉइस देखिए, लाइक माइंडेड पीपल लिव टुगेदर। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक हैं, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। ऐसे पाक लोगों के मुतल्लिक जो कुछ बोहतानबाज गलत बातें कर रहे हैं, वो इनसे बिल्कुल बरी हैं। इनके लिए बख्शिश और इज्जत वाली रोजी है। इस आयत की कई तफसीरें हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज इस वक्त आपको मैं बताऊं कि यहाँ पाक औरतें और पाक मर्दों से मुराद आयशा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खबीस अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथ वाले। यानी अल्लाह ताला ने दोनों किरदार सामने रख दिए। मियाँ बीवी को भी हक नहीं है कि ऐसी गंदी बातें आपस में करें, ना दूसरों की बातों को डिस्कस करें। बार दफा मियाँ बीवी के बीच में हर बात करना फर्ज समझते हैं, और औरतें कहती हैं ये हिब्बत नहीं है, कुछ नहीं, मैंने तो बस मियाँ से ही कहा था। और मियाँ साहब भी सबकी गंदगियां आकर बाहर के अंदर खोल दें, इससे भी अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब चाहते हैं मोमिनून और मोमिनात। दो आयात ईमान से मुतल्लिक, नूर 21, बुराई का हर रास्ता शैतान का रास्ता है। 23, तोहमत बदतरीन मुआशरती गुना है। कोई पसंद करता अपने बारे में, बेटी बहन माँ सास नहीं करता तो कभी ना करें, इसको पीछे डाल दें, इसको कभी सोचे भी ना। फिर 22 आयत का ये जुमला, अला तुहिब्बुना यग़फिरल्लाहु लकुम, बड़ा मुश्किल हुआ होगा अबू बकर सिद्दीक को, आसान नहीं है। देखिए कोई जान ले ले माल ले ले और बात है, बेटी की इज्जत दाग लगा दिया बेटी के दामन पे, लेकिन माफ कर देने में ही सुकून और इत्मीनान है। दूसरों को माफ कर दें, दूसरे को माफ करना असल में खुद को माफ करना। फेथ इन एक्शन बेहयाई और बुरे कामों की तरफ बढ़ने वाले पहले कदम को ही रोक देना। दूसरों की गलतियों पर तनकीद करने की बजाय माफ करने की आदत को अपनाना। रुझान हमारी शख्सियत का अक्स है, अपनी नियतों को पाक करके अपने रुझान की इसलाह करनी। रुझान पता क्या था, इंक्लाइनेशन, बस कहते मुझे बड़ा शौक है ना, मैं बस ऐसी ड्रामा देखती हूँ, नहीं, मैं गंदी चीजें नहीं देखती। तो जरा सा आप देखिए उसको, सुन ले, आप सुन रहे हैं ना, तो आप उसी ड्रामे को स्क्रीन बंद करके सुन ले, देखते हैं कितनी देर आप सुनते हैं। आज तो लोग खबरें भी सुनने से ज्यादा खबरें देखते हैं। खबरें रेडियो पे भी तो आती होंगी ना, नेट पे भी आती हैं, क्यों टीवी पे लगती हैं, इसलिए के साथ दिख रहा होता है। तो अपने अंदर से गलत मिलानात को दूर करने की दुआ करते हैं हम इंशाल्लाह। आगे है जी रुकू नंबर 4, 27 से 34, घरों में दाखिल होने के असूल। यहाँ थोड़ा सा मैं आपका माइंड भी साथ साथ ले चलूँ। अभी तक जिना और उसकी सजाएं सामने आई, अब यहाँ से आगे सूरत के एंड तक सद्दे जराए जिना स्टॉप करो। क्या मीन्स यूज करो, सद कहते मीन्स को, वॉल दीवार, यानी वो असूल जिसकी वजह से माशरे में जिना आम ही ना हो, उसमें अब पहला आपके सामने है रुकू नंबर 4, 27 से 34, घरों में दाखिल होने के असूल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू वतुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ईमान वालों के नाम रब की दूसरी पुकार इस बारे में, और क्या खूबसूरत फिर रसूल सिखा दिया। ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और घरों में ना जाओ जब तक की इजाजत ना ले लो, और वहां के रहने वालों को सलाम कर लो, यही तुम्हारे लिए सरासर बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। हाँ अगर वहां तुम्हें कोई भी ना मिल सके तो फिर इजाजत मिले बगैर अंदर ना जाओ, और अगर तुमसे लौट जाने को कहा जाए तो तुम लौट ही जाओ, यही बात तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला खूब जानता है। हाँ गैर आबाद घरों में जहाँ तुम्हारा कोई फायदा या असबाब हो, जाने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, तुम जो कुछ भी जाहिर करते हो और जो छुपाते हो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही इनकी पाकीज़गी है। ये दूसरा है सद्दे ज़राए ज़िना, कि मर्द निगाहें ही नीची रखें। लोग जो कुछ करें अल्लाह सबसे खबरदार है। अब औरतों का पर्दा, पहले मर्दों के पर्दे की बात है, अब औरतों की। हमारे माशरे में ये भी कॉन्सेप्ट है कि पर्दा सिर्फ औरत का ही है, अकेली औरत कभी पर्दा नहीं कर सकती जब तक मर्द पर्दा ना करें। बस औरत में मर्द से एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा है, बाकी तो दोनों का आगाज शुरू एक ही है। देख लीजिए कि मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें, ये भी मर्दों को कहा था। और अपनी किस्मत में फर्क ना आने दें, ये भी उधर आ गया। हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें, देखिए मर्द में जाहरी खूबसूरती नहीं है, सच्ची बात है नहीं है, ये तो अलग बात है, आपको अपने मियाँ सब खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ नजाकत और वो नरमी, वो खूबसूरती, जो नए नक्श हैं, जो बॉडी के कर्व्स हैं, वो मर्दों में नहीं होते। तो उनको क्या कहा जाता, क्या बिस जिस्म को छुपा लो, क्या छुपाए बेचारे, सीधा ढोल मटक्का जिस्म है, उसमें क्या पर्दा डाले बेचारे। तो मर्दों के पर्दे के बारे में इतने परेशान ना हुआ करें। हाँ अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी, औरत खूबसूरत होती, औरत के कर्व्स होते हैं, औरत की बॉडी में कशिश है, तो बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। क्या दो काम वही कीजिए, इक्वालिटी के नाम पे, जो मर्दों को कब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, आप तो खुश हो, क्योंकि खूबसूरत चीजें छुपाई जाती हैं। और वो क्या, और अपनी जीनत को जाहिर ना करें। अच्छा सबके सामने कैसे, हाँ सिवाय इसके जो जाहिर है, यानी जो छुप नहीं सकती, कद नहीं औरत छुपा सकती, जिस्म डेल डोल नहीं छुपा सकती, कपड़ा जो पहना है ऊपर उसका रंग नहीं छुपा सकती, यानी जो कर सकते हो वो तो करो, और जो नहीं कर सकते उसकी दुआ करो, और क्या करो, क्या छुपाओ, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले रहें। मैं यहाँ रुक के हमेशा कहती हूँ कि वो दीन कितना पाकीज़ा दीन है जो आपको दुपट्टा लेना भी सिखाता है। माएँ अपनी जवान होती बच्चियों को ऐसे सिखाती थी, कभी, अब नहीं, मुझे पता, अल्लाह माफ करे, दुपट्टे होते ही नहीं तो छुपाना कैसे। जिस दौर में हम थे, जब उम्र बड़ी होने वाली है, जान पे बन जाती थी, नानी दादी खाला पुप्पो मासी, इसलिए जहर लगती थी, हर एक के मुंह पे एक ही बात थी, दुपट्टा सही लो, सीधे खड़े हो, ऐसे नहीं बच्चियां खड़ी होती। आज तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। और याद रखिए, नंगी औरत की तस्वीर से वो इश्तिहा नहीं आती जो स्ट्रेची पजामे शर्टें और ऐसे कपड़े के जिसमें से जिस्म और भी नुमाया होके दिखे। अल्लाह तला हमारी बच्चियों की इज्जतें बचा ले। अच्छा और क्या करें, और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर ना करें, यानी औरत आराइश ना करे, ये तो नहीं कहा, करे, क्या करे, आराइश को किसी के सामने जाहिर ना करे, सिवाय तो सबके नहीं, देखिए इससे ज्यादा खोल के कानून आपको कौन देगा। घबराओ नहीं, डरो नहीं, आराइश कर सकती हो, अच्छा, और कर सकती हो तो दिखा नहीं सकती, नहीं, सिवाय अपने खाविंदों के, सबसे पहला हक एक औरत की खूबसूरती का, उसकी जिबाइश का, उसकी आराइश का, उसकी नुमाइश का हकदार उसका शौहर है। एक औरत अकेले में भी खुद से लुत्फ नहीं ले सकती, उसके शौहर के लिए जो मर्जी की, जो बनना है उनके सामने बनिए, अगर सजता है तो पहन ले, अकेले में पहन ले, दिखा ले उनको, ताकि बाहर वाली औरतों से ना टेम्प्ट हो, इल्ला ये कि उनका टेस्ट ही गंदा हो चुका हो। यानी एक औरत अपने मर्द के सामने जितनी आराइश दिखा सकती है, उतनी दूसरों के सामने नहीं दिखा सकती। और दूसरा घर में और कौन होता है, वालिद, वालिद के सामने कितना आएगी, जितना हया का तकाज़ा है, ये कोई किसी कानून में लिख के नहीं दे सकता कि अब्बा जी के सामने आप ये पहन सकते और वो नहीं पहन सकते। वो हया और अदल को जहन में रख लीजिए। और फिर ससुर, देखिए कुरान ससुर का नाम ले रहा है, इतना मुकद्दस रिश्ता है ये, शोहर का बाप आपका अपना बाप है, बीवी का बाप आपका बाप है, या अपने लड़कों के यानी बेटे, बेटों के सामने आप ऐसे ही आते रहेंगे। और बहनों को भी समझाइए कि भाइयों के सामने कैसे आना है, लड़के यानी बेटा माँ के सामने ऐसे देख रहे हैं, आपको हदीस बताऊं तो कांप जाएंगे कि कुर्बे कियामत मुहर्रमात में जिना होगा, बेटे माओ से, और इसी तरह बहनें भाइयों के साथ आजमाई जाएंगी, क्योंकि कपड़े नहीं ठीक, हाल हुलिया नहीं ठीक, और न जाने जिस्म एक को तो छोड़िए, जो इश्तिहार दिलाने वाली चीजें घरों में, उसको देखकर तो अल्लाह रहम करे, जो गंदगी देखेगा मर्द, उसके बाद उसको तो फर्क ही मिट जाता है कि घर में अब औरत माँ है कि बहन है कि बेटी है। और कोई ये किस्से आपने नहीं सुने हुए, या मैं इतनी पाकीजा जगह पे बैठ कर आपको ऐसी गंदी कहानियां सुनाऊं। तो याद रखिएगा, अपने घरों के अंदर एक नजर डालनी है। और या फिर सुन लीजिए कि सूरत अल अराफ में हमने औरतों का औरतों में ड्रेस कोड देखा था, जीनत भी है, मोती भी लगाओ, सितारे भी लगाओ, चुनरी के दुपट्टे पहन लो, मुकैश लगा लो, दबका सलमा, रंग बिरंगे जो मर्जी पहन लो, शर्त उसमें बस बता दी थी रीश है, और उसके बाद तुम्हारा सतर ना खुले। यहाँ जो बात हो रही है ना, ये घर के अंदर के मर्द, देवर, जेठ, नंदों के मियाँ और नंदों के बच्चे, और सो ऑन, कजन्स, फैमिली के बच्चे, सूरत अल्लाह साहब तक आप थोड़े और मेच्योर हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको बाहर जाते हुए क्या करना है वो बताया जाएगा। हमारा आज घर में क्या, आप पर्दा करें तो सास ही नाराज होंगी कि ये तो मेरे बेटों के ऊपर शक करती है, लो मेरे बेटे तो इतने नेक हैं, या अबू बकर से भी नेक हैं, उमर से, उस्मान से, अली से, इन सबसे भी ज्यादा आपके बेटे नेक हैं। यानी आज औरत ही कई जगह आप देखे रुकावटें डालती है, तो अल्लाह तआला कह रहे कि नहीं, अपनी जीनत जाहिर कर सकते हैं, ससुर से, लड़कों से, या अपने खामन के बेटों, सौतेले बेटे से भी खुलने के कुछ दर्जे हैं, या अपने भाइयों के, या अपने भतीजों के, या अपने भांजों के। आप देखिए ये लिस्ट आपको वहां नहीं याद आ रही चौथे पारे के आखिरी, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, वहां भी 10-12 लोग थे, यहाँ भी है। अगर पर्दा है ही नहीं, चेहरे का पर्दा नहीं है, औरत छुपे ना निकाब ना, मैंने क्या छुपाएगी वो अपने हिसाब से, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। और मैं अक्सर कहती हूँ कि पता अब हमें सब है, तौफीक मांगनी है। इल्म तो बहुत है, अल्लाह अब हिल्म भी दे दे, हिकमत भी दे दे, फहम भी दे दे। और ऐसे माशरों में आप देखिएगा, फिर नस्ब भी महफूज होंगे और इज्जतें भी पाक होंगी। क्या फरमाया इसके बाद, या फिर अपने मेल जोल की औरतों के, औरत और तुम्हें एक खास हद तक डिसेंट तरीके से एक्सपोज कर सकती है अपनी ब्यूटी को, कोई कबाहत की बात नहीं है। या गुलामों के, गुलामों से मुराद वो मूछों को बल देते हुए बहरे नहीं है, सॉरी, और वो आपके घर के अंदर काम करने वाले खानसामे नहीं है। कौन से गुलामों के, ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत वाले ना हो, ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों से मुत्तले नहीं, और इसी तरह जोर जोर से पाँव मार कर ना चले कि इनकी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए। ऐ मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। मैंने बहुत सोचा था कि इस बारे का एक लफ्ज लिख दूं, लेकिन अभी बोल देती हूँ, इज्तमाई तौबा की जरूरत। लिखिए, इनकलाब के लिए इज्तमाई तौबा की जरूरत है। आज हो क्या रहा है कि चार सिस्टर्स कुरान पढ़ जाती हैं, अल्लाह उनको और भी इस्तकामत दे, सारा खानदान उनको ऐसे देखता है जैसे एलियंस, जैसे वो कसाब को गाय भैंस देखती है ना, जिसको वो काटने आता है, वो बेचारियां फिर रोती हैं, फिर कहती हैं शादी में जा रहे हैं क्या करें, वो लोग हंस रहे होते हैं, वो रो रही होती हैं, लोगों की तारीफें हो रही होती हैं, उनकी तनकीदें होती हैं, शादियों में उनके दुपट्टे खींचे जाते हैं, वल्लाह ही निकाब ये क्या पहन के आ गई हो, ये क्या, मैं तो नहीं तुम्हें आगे बैठाऊंगा, तुम पीछे बैठो, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ऐसे इनकलाब नहीं आएगा, इज्तमाई तौबा। 1 साल के लिए मुसलमान मुल्कों वालों को एक दे दीजिए टारगेट के, 1 साल के चलो आजमाते हैं, क्या कुछ आजमाते हैं, फन है वो, फन एक चेंज है, एक जस्ट सा छोटा सा एक टेबलो कर लीजिए, एक छोटा सा छूटा मोटी जो बच्चों की तरह गुड्डी गुड्डे का खेल खेल के जरा इस्लाम के नुकमों पर अमल तो कीजिए। नकली नकाब पहनिए, छोटी बच्चियां नहीं थी पहनती पहले दौर में, आप भी पहन के देखिए। और मैं कहती हूँ अल्लाह ने 2 साल हमें पहनाए, 2 साल अल्लाह ने सेपरेशन रखवाई, हम होले होले होते हुए फिर उसी पे आ गए, तब नहीं था दम घुटता जब यहाँ मुंह पे लगता था, और अब तो कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये बता के आपको एक जिना का रास्ता बंद किया। आज भी ये चीजें आजमा के देख लीजिए, दुनिया से ये सब गंदगी लफ्ज जो ये खत्म हो जाएंगे। अब तीसरी चीज आ रही है, तुम में से जो मर्द औरत बेनिकाह हो इनका निकाह कर दो, बच्चों की शादियां करो छोटी उम्र में, और अगर कोई औरत है उसका शोहर फौत हो गया दोबारा शादी कीजिए उसकी। हम कहते अस्तग़फ़िरुल्लाह, अम्मा को क्या सूझी, हाय हाय ये हो गया वो गया। अब देखिए एक मर्द है उसकी बीवी बेचारी फौत हो जाए, और अगर 1-2 महीने में शादी हो जाए उसकी अगली, कहते हैं पहली चक्कर होगा, और ये देख, और किसी औरत बेचारी की इद्दत खत्म हो और कहीं उसका निकाह हो जाए, कहते हैं ये लगता है चक्कर पहले से ही था। मैं कहती हूँ हमारे माशरे से जालिम डसने वाला और तीर चुभने वाला माशरा नहीं, रोज रो के सोती है एक औरत जवानी में बेवा हो जाती है, सिर्फ लोगों की बातों की वजह से दूसरी शादी नहीं करती। मैं कहती हूँ उनकी सिसकियाँ और उनकी आहें आ जाए, जो सिर्फ एक एक दो दो दिन की बीवियां बनी और मर्दों ने छोड़ दिया, या वो चली गई और वो उन बच्चों को लेके आज सिंगल मॉम्स की तरह रोज कत्ल होता है उनके जज्बात का, उनके भी तकाजे हैं, उनकी भी ख्वाहिश है, उनके भी इमोशन है। एक बीवी शोहर के घर में रहकर कितनी अकड़ती फिरती है, कभी उन औरतों का आपने सोचा है जो बेचारी है सारी जिंदगी एक मर्द की बेगैरती की नजर हो जाती है, ये जिना की बदकारी है। और जहां आप देखें बाहर के मुल्कों में आप देखें रिश्ते होते हैं, उसमें कम से कम 70% का तो शक ही होता है कि मर्द पाक साफ है भी कि नहीं। मत ग्रीन कार्ड से मुतासर होकर बेटियां दें, ये मैं इंडिया पाकिस्तान वालों को कह रही हूँ, आप सब ना सुने, बेटी का रिश्ता आपको बाहर से आए 200 दफा सोचें फिर हाँ करें, अच्छा होगा ना तो आपके पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा अच्छा होगा, वो लड़का साफ होगा, आगे आ रही है उसकी मिसाल, और खराब हुआ ना तो आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा खराब होगा, आप तो सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी पाक साफ बेटियां ऐसे दे देना, ये तो जुल्म है, ये कोई बोझ है जो सर से उतार दिया, तो बेटी वालों की भी अगर जिम्मेदारी है तो बेटे वालों की भी। और आपको पता है आपका बेटा गंदा है, खबरदार किसी आपने पाक बच्ची के घर के चौखट पे कदम भी रखा, नहीं ठीक कर लेगी ना, इसको नेक बीवी ले दूं, आपने बिगाड़ने में हद कर दी, तो एक 18 साल की बच्ची आकर आपके उस बिगड़े हुए बेटे को ठीक कर लेगी, जुल्म की हद है। टूट जाती है और सारी जिंदगी फूट जाती है, जहनी मरीज बन जाती है, लेकिन वही बात है कि जिनको नहीं समझना तो वो नहीं समझते। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमा दिया, तुम में से जो मर्द औरत बे निकाह हो इनका निकाह कर दो, और अपने नेक बख्त गुलाम लौंडियों का भी, अगर वो मुफलिस भी हो तो अल्लाह इन्हें अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। और इन लोगों को पाक दामन रहना चाहिए जो अपना निकाह करने की कुदरत नहीं रखते। ये हर उस मर्द औरत लड़के और लड़की के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, माँ बाप नहीं कर रहे या मुआशरा नहीं करने दे रहा, तो फिर वो पाक दामन और अल्लाह के नबी ने हदीस की रोशनी में जो बताया कि रोजे रखे, कसरत से नफली रोजे रखे ताकि वो आंखों को नीचा करते। और मैं अब माओ को एक पैगाम दूंगी जिनके बच्चे 10-12 साल के हो गए और चारों तरफ गंदगी का माहौल है और शादी बिकरनी नहीं, होनी नहीं, देनी नहीं, लेनी नहीं, उनको नफली रोजों की आदत डाल दें। पीर और जुमेरा, गंद के अंदर से आपके बच्चों की बेटों की खातिर में नजरों को पाक करने वाली चीज रोजे हैं। नमाज रोजा, नमाज रोजा, एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह उनकी नजरें भी पाक रहेंगी, यहाँ तक कि अल्लाह इन्हें अपने फजल से मालदार बना दे। ये जुमला भी आपको बता रहा है कि मनी को रुकावट ना बनाओ बेटों की शादी में, कभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, अल्लाह के बंदो 1 साल का खड़ा हो गया था। ये हमारा धोखा है कि बच्चा अभी शादी के काबिल नहीं हुआ। आप 14 साल के अपने बेटे से अकेले में पूछिए, बेटा यू नीड शादी? वो कहेगा यस, लेकिन तुम्हें अभी 10 साल सब्र करना है, 24 साल के हो गए फिर तुम्हारी शादी करूंगी। आप 10 साल उसको भूखा रखेंगे? नहीं, वो इधर उधर चखे मारेगा, वो इधर उधर गंद देखेगा। सारा मुआशरा तो प्रमोट कर रहा ही नहीं गंदी चीजों को, और फिर रोते हैं जब कोई एक बात सामने आती। इस मुआशरे में दादियों पे तरस नहीं आता जो चार चार पोते पोतियां पाल रही हैं, बेटों की किसी किसी औरतों से बच्चे हैं, वो ला के दादियों के पोल्ले पे डाल देते हैं। अम्मा अब तुम इनकी अच्छी तरबियत करना, इनकी माँ तो इनको बिगाड़ देगी, वो तो एक तो चली गई, एक तो है ही नहीं। यानी गुनाह की औलादें माँ बाप पाल रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं इनकलाब बन, अल्लाह ऐसे मुसलमानों की मदद करे, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, सब छोड़ के चले जाएं ऐसे बाहर की दुनिया, अगर उनको यहाँ यही करतूत करने हैं। अपने मुल्कों के हालात तो जाकर देखिए, जाना किधर है आपने? असल बात है कि इस्लाम को नाफिज करने के लिए नजर को पाक करना पड़ेगा। अल्लाह ताला बस हमें इतने से ही समझने की तौफीक दे दे, और तुम्हारे गुलामों में से जो कुछ तुम्हें देकर आजादी की तहरीर करानी चाहे तो तुम ऐसी तहरीर इन्हें कर दिया करो, अगर तुमको इनमें को भलाई नजर आती। ये भी एक सद्दे ज़राए आज नहीं है, किताबत कहते थे, यानी गुलामों को आजाद कर दो। और अल्लाह ने जो माल तुम्हें दे रखा है इससे इन्हें भी दो। तुम्हारी जो लौंडियां पाक दामन रहना चाहे इन्हें दुनिया की जिंदगी के फायदे की गरज से बदकारी पर मजबूर ना करो, और जो इन्हें मजबूर करते तो अल्लाह ताला इन पर जबर के बाद बख्श देने वाला और मेहरबानी करने वाला। अब्दुल्ला बिन उबई का चकला था, औरतों से जिस्म फरोशी के काम लेता था, अल्लाह ने उन्हीं की तरफ इशारा कर दिया। और अब देखे सूरत नूर चुके नूर है, तो आयत सुनिए, हमने तुम्हारी तरफ खुली और रोशन आयतें उतार दी हैं, और इन लोगों की कहावतें जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं और परहेजगारों के लिए नसीहत है, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अल्लाह के ये कवानीन तुम्हें जिंदगी में रोशनियों में लाना चाहते हैं, ना कि तुम्हें तारीखियों में डालना चाहते हैं। दो आयात हैं ईमान से मुतल्लिक, नूर 27, घरों में दाखले के असबाब सद्दे ज़राए ज़िना है, और नूर 30, शहवात को इब्तदाई दर्जे पर ही रोक लेना पाकीज़गी की जमानत है। फिर आप देखिए इसमें यगुद्दु मिन अब्सारिहिम का हुक्म मर्दों के लिए था आयत 30 में, और यगदुत न के लफ्ज 31 में औरतों के लिए था। क्यों? इसलिए कि आंख दिल का दरवाजा है, जो चीज आंख से दिल में चली जाती है वो दिल ही में बैठ जाती है, और आंख के फितने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी जब मर्दों की नजरें नीची हो जाएंगी तो क्या वो फिर देखेंगे औरतों को? अब तो चले सामने आमने तो कौन देखे, स्क्रीनों पे देखते हैं। ये हीरोइनों की तस्वीरें, क्या हीरोइन बहन लगती है? किस नजर से मर्द उसको देखता होगा जो औरत सर से पांव तक जीनत का इजहार बनी? ऐसे लोगों को फिर जिना की सजाएं दे देनी चाहिए ताकि आपके मर्दों की इज्जतें महफूज हो। और सबसे बड़ी बात, देखिए घर टूट रहे हैं बेहयाई की वजह से, हर दूसरे तीसरे चौथे घर में दरारें पड़ चुकी हैं। जो निभ भी रहे ना, वो इसलिए कि अब दीवार गिर गई तो इसका क्या बनेगा, सब खुल जाएगा। चुप करके मियाँ साहब आप ठीक हो जाए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। 30-30-40 साल से एक औरत एक मर्द के साथ रहती है और मर्द जिना करती, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, फिर वो नस्लें क्या होंगी, बेटे बाप से ज्यादा बड़े खराब होके निकल रहे हैं। तो वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, सूरत नूर 31, औरतों के लिए क्या हुक्म है? मर्दों से एक हुक्म ज्यादा था। अब आपके सवाल का जवाब है, आराइश कर सकती है औरत? कर सकती है। अच्छे कपड़े पहनिए, नो प्रॉब्लम। महंगे पहनते हैं, सस्ते पहनते हैं, ये आपका अपना तकवा है। ज़िबाइश जायज़ है? जायज़ है। क्या? मेकअप, जेवर, ज्वेलरी, नो इशू। हाँ, नुमाइश, ये जायज़ नहीं है। लोगों को दिखाना, जलाना, फ्लॉन्ट करना, और फिर वही बात है, गैर मर्दों को दिखाना, इसकी इजाजत नहीं है। फेथ इन एक्शन, दूसरों के घरों में ताक झांक से दूर रहना है। मुआशरे में आसान निकाह की तरगीब में अपना हिस्सा डालना है, ये तो दिल पे लिख लीजिए, निकाहों को आसान कीजिए। ये जो हमने 1 करोड़ की एक शादी रखी है ना, ये कितने लड़के लड़कियों के जज्बात का खून करने वाली एक अजीब कैफियत है। अपनी निगाहों को पाक रखने के लिए अपने ख्यालात को पाक रखना है। नहीं हो रहा तो अगले रुकू में अब अल्लाह आपको अपना मुकाम दिखाता है। इसको मार्फत के नाम पे सुनिएगा।